आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज के अखबार, आज के अखबार।
हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये है आज के अखबार। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और मेरे साथ प्रतीक वाघमारे हैं। हम दोनों देश विदेश के अखबारों की सुर्खियां आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देश के अखबारों से शुरू करेंगे। प्रतीक बताइए।
तो नितिन, सबसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस देख रहा हूं। इसमें खबर है कि तिहाड़ जेल में पिछले साल 6,740 कैदी थे, उन्हें पेरोल पर छोड़ा गया था कोविड-19 की वजह से, जिसमें से अब 3,468 कैदी है वो मिसिंग है। तो जितने भी ये कैदी थे, कोई HIV से ग्रसित था, किसी को कैंसर था, कोई किडनी की समस्या से जूझ रहा था, किसी को हेपेटाइटिस बी, सी, अस्थमा, TB जैसी समस्याएं थी, इन लोगों को पेरोल पर छोड़ दिया गया था। और क्योंकि कोरोना भी बढ़ रहा था, उसका खतरा था, लेकिन अब जब इनका डेडलाइन ख़त्म हो गया है, इन्हें वापस से जेल में होना चाहिए, तो इसमें से 3,000 से ज़्यादा कैदी मिसिंग है। और अब जेल अथॉरिटी ने दिल्ली पुलिस की मदद मांगी है कि वो इन्हें ट्रेस करने में जेल अथॉरिटी की मदद करे।
देखिए, मेरे पास हिंदुस्तान है और इसकी हेडलाइन है निष्कर्ष, कोरोना की कम जांच करना राज्यों पर भारी पड़ रहा। लिखा है कि तीव्र संक्रमण के कई कारणों में से एक एंटीजन टेस्ट पर निर्भरता ज्यादा होना भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। जिन राज्यों में RT-PCR टेस्ट कम हुए हैं, वहां कोरोना संक्रमण की दर बेहद तेज है, पर जहां ये टेस्ट ज्यादा हुए वहां अपेक्षाकृत कम है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के आंकड़े एकत्र किए और इसके अनुसार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, UP, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल ऐसे राज्य हैं जहां RT-PCR टेस्ट 60% से कम हैं।
और नितिन, दो हेडलाइन जो है हर अखबारों में छपी है कि 12वीं की परीक्षा टली है और 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन से प्रमोशन दिया जाएगा, और जो छात्र सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनके मार्क्स से उनको फिर एग्ज़ाम देने का मौका भी दिया जाएगा। और कोरोना को लेकर हर जगह छपा है, जनसत्ता ने छापा पहली बार 2,00,000 की दहलीज पर, क्योंकि कल जो आंकड़े थे वो 1,99,000 को पार कर गए थे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और एक लंबे अरसे के बाद ये पहली बार है पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 15.92% तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में भी 50,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं।
जी प्रतीक, अब ये जो अगली खबर है ये है जागरण से। इसमें लिखा है, गतिरोध तोड़ने के लिए दुबई में हुई थी भारत और पाकिस्तान की गोपनीय बैठक। रॉयटर के हवाले से खबर लिखी है अखबार ने और बताते हैं कि कश्मीर मसले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच कायम गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों देशों के शीर्ष खुफिया अधिकारियों की एक अहम गोपनीय बैठक जनवरी में दुबई में हुई थी। पुलवामा कांड और उसके जवाब में भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों नाभिकीय शस्त्र संपन्न देशों के बीच संबंधों में बहुत तल्खी है। पुलवामा कांड और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद 2019 में ही भारत के PM मोदी ने कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेकर इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और इसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने भारत से अपने राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाते हुए द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया था। तो बस इसी के बाद दोनों देशों ने बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत फिर से बातचीत शुरू की।
और मैं दैनिक भास्कर देख रहा हूँ, इसमें एक तस्वीर छपी है, 10,00,000 भक्तों की डुबकी। तस्वीर हरिद्वार के कुंभ की है, बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन भास्कर ने यह भी लिखा है कि ये गलत है, संक्रमण बेकाबू, सख्त पाबंदियां, फिर कुंभ की भीड़ पर मौन क्यों? क्योंकि पिछले साल भी याद होगा जब निज़ामुद्दीन मरकज़ में कई लोग जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे उन्हें किस तरीके से लताड़ा जा रहा था, लेकिन अब कुंभ पर कई लोग इस पर मौन है, इस पर भास्कर ने तस्वीर छापी है। और एक और इंटरेस्टिंग भास्कर खास में ये छपा है कि बच्चों पर हाथ उठाने से बचे, पिटाई से सोचने समझने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है, स्थिति को भी भाप नहीं पाते। ये हार्वर्ड के वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों की पिटाई से बच्चों में दिमागी कुपोषण और मानसिक विकृति आ जाती है, इसलिए उनकी पिटाई जो होती है उससे उनकी कैपेसिटी पर भी, सोचने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। इसमें वैज्ञानिकों ने 3 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों के शरीर पर पिटाई के प्रभावों से मिले डेटा का विश्लेषण किया है और इस नतीजे तक पहुंचे हैं। और भास्कर की एक और सुर्खी है कि रेमडेसिविर की कीमत 3,500 रुपये तय, 6 और कंपनियां इसे बनाएगी। तो जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो देश भर में मांग उठ रही है, कालाबाजारी की खबरें आई है, लंबी कतारों में लोग खड़े होकर इसे खरीदने के लिए लगे हुए थे, गुजरात की खबर थी, तो अब केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया है कि 3,500 रुपये की रेमडेसिविर की कीमत होगी और इसका जो प्रोडक्शन है उसे भी 2 गुना कर दिया जाएगा। हालांकि WHO ने कहा है कि रेमडेसिविर सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए प्रभावित है, बाकी इसका कोरोना से लड़ाई में कितना सहयोग हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जनसत्ता में छपा है कि चुनाव आयोग ने कल बंगाल में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होता है, जिसमें से 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अब आधे चुनाव के चरण जो है वो बाकी है। इसलिए 16 अप्रैल को सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई है। इसमें ये समीक्षा की जाएगी कि सभी पार्टियां चुनाव प्रचार और रैलियों में कोविड के नियमों का पालन गंभीरता से कर रहे हैं या नहीं। तो ये सवाल भी बहुत उठा था नितिन की जो चुनाव में है वहाँ कोरोना नहीं होता है, बाकी जगह कोविड फैल रहा है, तो अब इसी पर बातचीत होगी। दरअसल ये बैठक इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को कि ये आप सुनिश्चित करें कि राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार और रैलियों में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अब खैर इतनी लंबी और बड़ी भीड़ होती है तो कैसे ही वहाँ पर कोविड के नियमों का पालन होगा ये कोई नहीं जानता। और नितिन मैं एक कार्टून का जिक्र करूँगा, भास्कर में ही छपा है, एक अस्पताल की सीढ़ियों पर जो है कोविड मरीज वो लेटे हुए हैं, सबसे निचले पायदान जो है, सबसे निचली सीढ़ी वो अभी भी खाली है। तो जो साइड के मरीज है वो कह रहे हैं कि हाँ अभी एक बेड और खाली है, यहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो जिस तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या जो वो बढ़ गई है, अधिक से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज्ड है कोविड के चलते और कोई भी बेड कहीं भी खाली नहीं है, उसे लेकर ये कार्टून छपा है। और जनसत्ता में एक आर्टिकल छपा है ग्रीष्म लहर की चुनौती, गर्मियों का मौसम जो आ रहा है, तो अगर तापमान में 0.5 डिग्री का भी इजाफा होता है तो ये जो लू का प्रतिकूल प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। अब तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पृथ्वी का तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ चुका है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2040 तक ये 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इससे उन देशों की स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है जिनकी ज़्यादातर आबादी खेती या मजदूरी करती है और भारत भी इसी श्रेणी में है। तो किस तरीके से चैलेंजेस है वो इस आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है।
ये बताइए प्रत्येक विदेशी अखबारों में क्या है।
इंटरनेशनल अखबार में सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा हूँ, इसकी 3 खबरें मैं बताऊंगा नितिन, वैक्सीन को लेकर ही है कि कोरोना तो एक संकट है ही लेकिन वैक्सीन से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पहली खबर तो ये है कि USA में जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर 6 लोगों में ब्लड क्लॉट्स देखे गए, 1 की मौत हो गई, 1 गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद अब CDC ने तय किया है कि अभी J&J की वैक्सीन को एसेस करने के लिए हफ्ते भर से भी ज़्यादा का समय चाहिए, इसलिए अभी फिलहाल उस पर रोक लगी हुई है। 10 मिलियन डोजेज J&J के तैयार है लेकिन देखिए उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका है जहां पर कोरोना का संकट है लेकिन क्योंकि नए वेरिएंट के कारण वहां पर कोई भी वैक्सीन प्रभावी साबित नहीं हो पा रही है। AstraZeneca की वैक्सीन है उसको उसके तो पहले ही रोक लगा दी गई थी क्योंकि वो कुछ खास प्रभावी साबित नहीं हो रहा था। अब J&J की वैक्सीन भी साउथ अफ्रीका पहुँच रही थी लेकिन उस वैक्सीन के इस्तेमाल को भी रोक दिया गया है क्योंकि US में ब्लड क्लॉट्स की समस्या आ रही है। और डेनमार्क है जहाँ पर AstraZeneca के इस्तेमाल को परमानेंटली बंद कर दिया है क्योंकि जो ब्लड क्लॉट की समस्या देखने को मिल रही थी उसके बाद डेनमार्क ने ये कदम उठाया है। डेनमार्क को लेकर एक और खबर है, द गार्डियन में छपा है कि यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है डेनमार्क जिसने सीरियन रेफ्यूजीज की रेसिडेंसी परमिट को रद्द कर दिया है अब, डेनमार्क का ये कहना है कि सीरिया जहां पर कई युद्ध होते रहे हैं जिसकी वजह से देश काफी प्रभावित है, अब वो सेफ जोन में है, इसीलिए सीरिया के रेफ्यूजीज को लौट जाना चाहिए, क्योंकि 189 सीरियन एप्लीकेशंस आई थी टेम्प्ररी रेसिडेंसी के रिन्यूअल के लिए, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया। अब इस पर डेनिश रेफ्यूजी काउंसिल है, उसने इस बात की डेनमार्क की आलोचना की है कि ये मानना कि सीरिया के हालात पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और सेफ है और रेफ्यूजीज को लौट जाना चाहिए, ये बहुत ही गलत डिसीजन है और इससे डेनिश रेफ्यूजी काउंसिल डिसअग्री करता है। ना ही यूएन और ना ही कोई भी कंट्री सीरिया को सेफ मानती है। इसके अलावा छपा है गार्डियन में ही कि चाइना ने जो तय किया था कि 2060 तक वो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा, पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से, उसके लिए चाइना को 600 कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को अगले 10 सालों में बंद कर देना चाहिए और उसे रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो रिप्लेस कर देना चाहिए, तब जाके वो अपने इस गोल को 2060 तक पूरा कर पाएगा, एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। और गार्डियन की स्टोरी है कि यूके में कोविड स्टेटस सर्टिफिकेट को लेकर अब रार शुरू हो गई है। मिनिस्टर्स का कहना है कि इससे सोसाइटी को ओपन करने में आसानी होगी, लोगों के पास कोविड स्टेटस सर्टिफिकेट होगा, लेकिन जो वहाँ के इंडिपेंडेंट इक्वालिटी वॉचडॉग एजेंसी है, सरकार की ही है, उसने इसे भेदभाव पूर्ण बताया है। उनका कहना है कि कोविड स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करने से डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा बढ़ेगा, कई जगह पे जॉब्स लोगों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये कहा जाएगा कि आपने वैक्सीनेट आप नहीं हुए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कोविड स्टेटस सर्टिफिकेट यानी एक तरीके से वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर, इम्यूनिटी पासपोर्ट को लेकर जो आलोचना है वो शुरू हो गई है। तो डॉन अखबार है पाकिस्तान का, इसमें छपा है कि टीएलपी जो है यानी कि तहरीक ए लबैक, इसे सरकार बैन करने की तैयारी में है। इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जब से इनके चीफ को अरेस्ट किया गया है उसके बाद इनके सपोर्टर्स जो है वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, इसलिए इसे बैन करने की तैयारी में पाकिस्तान की सरकार है। तो आज के अखबारों की यही प्रमुख सुर्खियां हैं नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दूर से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे यही दिखाई देता है कि क्या हो रहा है और कैसे एक साथ हो रहा है। सापेक्षतावाद हमेशा मेरे चयन का और समझने का एक कारण रहता है। तो एक तरफ मैं देख रहा हूँ शमशानों में लगी हुई भीड़, एक तरफ मैं देख रहा हूँ बेड के लिए कतार लगाए हुए लोग, एक तरफ मैं देख रहा हूँ मजदूरों का, छात्रों का, बच्चों का असमंजस, और दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है भूख से रोते इस घर में बजता हुआ एक झुनझुना। पूरा घर भूखा है और एक झुनझुना बज रहा है ताकि बच्चों का ध्यान बटे।
ये बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे अमानतुल्ला खान ने अभी हाल में कहा था कि वो जो नरसिंहानंद है उनका सिर काट देना चाहिए, लेकिन संविधान इसकी इजाजत
नहीं देता, इसलिए पुलिस कार्रवाई करे।
ये अमरोहे के थे ना जॉन,
जॉन ने कहा था।
हाँ बात नहीं सुनी गई।
वैसे वो अजीज भैया का भी तो है,
आपसे एक बात कहनी थी।
छोड़िए
छोड़िए, खैर
कोई बात मैं शहरा।
तीन रंगों के तीन किरदार, ताऊ बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट तीन तार, नया हफ्ता नया पवाल, aajtak.in/radio के साथ साथ Spotify, JioSaavn, Apple पॉडकास्ट और Google पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।